हक की ये प्रोग्राम है पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक का
और मैं हूं वकार मुस्तफा। समीन, गैरत के नाम पर कत्ल जैसे बड़े जुर्म की रोकथाम के लिए एक आम कानून तश्कील के मराहिल में है। ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अहम पेशरफ्त है। इससे किसी हद तक उस जुल्म का खात्मा होगा जो इस मुआशरे में रवा रखा जाता है। घर का एक फर्द कत्ल करता है और दूसरा मकतूल का वारिस बनकर मुकदमा लड़ता है। जब अदालत सजा सुनाती है तो वारिस कातिल को मुआफ कर देता है। यूं मुजरिम कानून में मौजूद एक सकम से फायदा उठाते हुए साफ बच जाता है। हर जुर्म जहां फर्द के खिलाफ होता है वहां रियासत के भी खिलाफ होता है। अगर एक फरीक ने मुआफ कर दिया तो ये लाजिम नहीं कि दूसरा फरीक भी मुआफ कर दे। अगर रियासत ये समझती है कि इससे जुल्म को फरोग मिल रहा है तो जुल्म को रोकना इसके फराइज़ मनसबी में शामिल है और वो इस हवाले से चाहे तो मुजरिम को मुआफ करने से इनकार कर दे। इसी तनाजुर में पाकिस्तान कमीशन बरा इंसानी हुकूक ने एक मुशावरत का एहतमाम किया। मुशावरत में हुकूक इंसानी के कारकुनों, वकला, सरकारी अहलकारों, माहिरीन कानून और सहाफियों ने शिरकत की। इंसानी हुकूक की मुतहर्रिक कारकुन खावर मुमताज।
जो औरतों के ऊपर तशद्दुद होता है घरों में, उसकी मुख्तलिफ नौइयत होती है, मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, लेकिन ये काफ़ी बहुत पुरानी बात नहीं है कि इसको एक पब्लिक इशू के तौर पे उठाया गया। मेरा ख्याल है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से पहली पब्लिक गुफ्तगू जो शुरू हुई वो वुमेंस एक्शन फोरम ने ही की थी, जब शरी रहमान ने यह बिल प्रपोज किया था 2004 में, गैरत के नाम ऑनर किलिंग को एक कानून के अंदर एक क्राइम के तौर पे सामने आ गया हमारे पास। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो कानून बनने के बावजूद और इस बात के बावजूद कि इसको फसाद फिल अर्ज उस कानून में भी करार दिया गया था, इसका कोई इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता है। इस कानून के तहत इतने लोगों को इसके तहत सज़ा हुई कि नहीं, हमें ये ज़रूर मालूम है कि इस तरह के केसेस में इस कानून के होने के बावजूद माफ़ीनामे भी हो गए, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गए और पार्डन्स भी हो गए। कहीं ज़बरदस्ती के हुए हैं और कहीं खुशी खुशी लोगों ने अपने ही घर के लोगों को बचाने के लिए उसमें माफ़ीनामे हो गए। और इस अरसे में हम ये देखते हैं कि इस ख़ास कस्म के मखसूस जो जुर्म है, अखबारों की खबरों से तो लगता है कि तादाद बढ़ती जा रही है। अब असल में वो तादाद बढ़ी है या रिपोर्टिंग बढ़ी है तो तनाज़े है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग हुई है तो तय तो हुआ भी है और कितने नहीं रिपोर्ट हुए हमें उसकी पता ही नहीं है। जो कानून 2004 का है उसकी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अहमियत यही है, इस किस्म के इस नौयत के कत्ल को एक तस्लीम किया गया कि ये एक क्राइम है और इसके लिए हमें कानून की ज़रूरत है। केस शुरू होता है और उसी वक्त राजीनामा हो जाता है और बल्कि कोर्ट्स इनक्रेज करते हैं कि जल्दी से जल्दी राजीनामे हो जाए ताकि केसेस जो हैं उसको पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ चले ही नहीं। तो एक तो ये था, दूसरा इसमें जो एक और बात थी कि फसाद फिल अर्ज को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, दैट वाज द अदर थिंग। ये दो जो बहुत अहम शिके हैं वो इस कानून में अब हैं कि नहीं हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि राजीनामा होना है कि नहीं, कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है ऑफ द लॉ, इज़ इट बीइंग कंप्लीटेड और नॉट, और फिर अगर कंप्लीट हो जाती तो उसमें राजीनामे की गुंजाइश है कि नहीं और उसके बाद सज़ा होती है कि नहीं जिसने के जुर्म किया है। इसको फसाद फिल अर्ज कैसे इस्टेब्लिश करेंगे और उसके क्या तरीके कार हैं, डज दैट गेट फुलफिल्ड इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, वाई शुडंट दिस बी सीन एज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट। अभी कंदील बलोच के केस में तो स्टेट बन गई है, तो अब क्या हर दफ़ा क्यों नहीं बन सकती, ये सवाल उठता है जहन में। लेकिन क्या कसासन दियत का कानून जिस तरह अभी है उसमें क्या ये शिक किसी तरह से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि नहीं, ये तो एक लीगल ट्रेंड है और हमें ये भी देखना है कि जब एक दफ़ा कोर्ट में कोई केस जाता है तो हम नॉर्मल कोई भी केस हो, चाहे मर्डर का हो या किसी और क्राइम का, सालों साल लगते हैं उसको ख़त्म करने में। तो हमें जुडिशल प्रोसेस को भी तो देखने की ज़रूरत है कि उसमें कुछ तेज़ी से और इंसाफ जो है वो वक्त पे मिले बजाय इसके कि 10-15-20 साल लग जाएं। और फाइनली हम अपनी सोसाइटी में जो एक इनटॉलरेंस और कल्चर एक है ऑफ टेकिंग लॉ इन योर हैंड, इन सब चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। सोसाइटी जो है हमारी है वो और भी नैरो माइंडेड होती जा रही है, इनटॉलरेंट होती जा रही है, ایک ہی قسم کی سوچ سب میں پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش ہوتی ہے, اور کسی کی اگر کوئی سوچ ذرا مختلف ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی. جب ہم آنر کلنگ کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس کمیشن کے ہی جو اعداد و شمار ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوتی ہے مردوں کی تعداد. تو اس کو کس طرح سے ہم ایڈریس کریں ان ولنریبل عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے, بچاؤ کے کیا ادارے ہیں, پروٹیکشن ملے یا نہ ملے, یہ بہت ساری چیزیں جو ڈسکس کرنے کی بات ہے. ایک سوشل بھی ہیں, لیگل بھی ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ پولیٹیکل بھی ہیں. پروسیکیوشن میں اور انویسٹیگیشن میں جو دیر ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی ضروریات ہیں فورینسک کی ہیں یا ٹریننگ کی ہیں, وہ کس حد تک کم ہیں اور کمزور ہیں.
ماہر قانون اعظم نذیر تارڑ.
میرا نام ہے جی اعظم نذیر تارڑ, میں بنیادی طور پہ فوجداری وکیل ہوں. 2004 کے قانون کے بعد کہ ہمیں کسی فردر امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب نیا قانون متعارف کروایا گیا تو جلد بازی میں کیا گیا, اس میں غلطیاں ہوئیں. کچھ ترامیم آپ کو یاد ہوگا 93-94 میں آئیں, پھر کچھ ترامیم سن 2000 میں بھی دی گئیں. فائنلی جو آپ کا غیرت کے حوالے سے زیادہ کام ہوا وہ 2004-05 میں ہوا. اور میری ذاتی اور ادنا رائے یہ ہے کہ اگر ہم 311 کو پڑھیں اور اگر ہم 338E کو پڑھیں, دونوں میں انہوں نے یہ رائٹ جو ہے وہ ویسٹ کر دیا کورٹ میں, کہ کورٹ لکنگ انٹو دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز, پیکیولر سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے راضی نامے کے باوجود سزا کر سکتی ہے. اور 338E میں فساد فی الارض کا ذکر نہیں ہے. کورٹ کین سمپلی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ, کورٹ از ناٹ ابلائزڈ ٹو ایکسیپٹ راضی نامہ ایٹ اینی کاسٹ. وہی بات جو 2002 میں لکھی لاہور ہائی کورٹ میں, وہی بات 338E میں تھی تو انہوں نے لکھی, وہ بیونڈ دا لا نہیں ہے. اور یہ امینڈمنٹ شہری رحمان صاحبہ کی امینڈمنٹ سے پہلے کی ہے. جو رائج الوقت قانون ہے آپ کا, اس میں ایز سچ میجر امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. 2004 کے بعد اس کا حلیہ بہت حد تک درست ہے, اور 338 کی صحیح تشریح کسی ایک مقدمے میں کروا لیں, آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے.
وکیل اور محقق اسد جمال.
عمومی طور پر عورت کی زندگی کی قیمت کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں ہم عورت کو, معاشرہ آپ کا کیا سمجھتا ہے؟ ججوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, پروسیکیوٹرز کا بھی یہی مسئلہ ہے, وکیلوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. وی ڈونٹ کیئر, وی ڈونٹ اٹیچ اینی ویلیو ٹو دا لائف اینڈ لبرٹی آف ویمن ان دس سوسائٹی. کہ آغاز ہوتا ہے کیس کا, اول تو رجسٹر ہی نہیں ہوتے, رجسٹر ہو جائیں سسٹم میں آ جائیں تو چالان پیش ہونے سے پہلے ہی یا چالان ہونے کے فوراً بعد وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, معاملہ رفع دفع ختم. سٹیٹ اور سوسائٹی کو مارجنلائز کر دیا گیا ہے, اور فرد کو اور خاندان کو اور ٹرائبز کو وہ پرائمری امپورٹنس دے دی گئی ہے. ہمارے قانون کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. 2005 کا جو کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ تھا, اس نے آنر کلنگ کو تو قصاص اور دیت کے سکوپ سے نکال دیا مکمل طور پر. جب 311 میں بڑی واضح طور پر یہ بات ڈیفینیشن میں آ گئی کہ آنر کلنگ مسٹ نیسسریلی بی کنسیڈرڈ ایز فساد فی الارض, دین دیر از نو اسکوپ فار دا کورٹ ٹو یوز اٹس ڈسکریشن ایز دے آر ناؤ یوزنگ. دیٹ از دے سینکشن دی الاؤ کمپاؤنڈنگ اینڈ ویورز in honor killings to happen. That's against the existing legal framework. Honor killing ke case mein maut ki saza hogi ya umr qaid hogi, ye bhi bada wazeh taur par keh diya. Aur pechidgi kahan hai 338E mein? 338E ko agar aap padhe to usme ek proviso add ki gayi criminal law amendment 2005 ke mein hi. Jab us proviso ko padha jata hai to ye socha jata hai ya farz kar liya jata hai کہ وہ پروائزو 311 کو بھی کنٹرول کرتی ہے. میں اسے اختلاف کرتا ہوں. 311 مخصوص قسم کے جرائم کو ڈیل کر رہا ہے مخصوص قسم کے حالات میں. دس از اے اسپیشل لا وچ کریٹس این ایکسیپشن ٹو دی نارم آف ایپلیکیبلٹی آف قصاص اینڈ دیت. 338E جنرلی اینڈ دا پروائزو اسپیسیفکلی ڈیلز ود دی جنرل لا آف قصاص اینڈ دیت. اٹ ڈز ناٹ ہٹ, اٹ ڈز ناٹ کنٹرول 311. اس کی ورڈنگ میرا خیال ہے کہ بڑی واضح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیجسلیچر ایک ہی امینڈمنٹ کے ذریعے ایک شک میں تو ایک بات کہے, آگے چل کے اس کی نفی کر دے. دس کریٹس این ابسرڈیٹی. And this, that's why we need to deal with this absurdity in a way which interprets the law in a harmonious way.
Police ke sabik sarbara Tehsin Shah.
तहसीन शाह मेरा नाम है, मैं रिटायर्ड आईजी हूँ. हमारा जो मर्डर है उसका जो मोटिव है हमेशा से ट्रेडिशनली वो रहा है जन जर जमीन. ये तीन लफ्ज हमने हमेशा सुने हैं कि जी कत्ल की जो मोटिव है वो है जन जर जमीन. ऑनर किलिंग एक बजवर्ड है और इसके ऊपर हम अब गुफ्तगू जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं. पैराडॉक्स ये है कि हम एज अ सोसाइटी तो प्रिमिटिव एज में रह रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट और जो हैं वो हम 2014-2016 के जो हैं उनको उनके मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं. अब हमारी सोसाइटी का जो माइंड सेट है वो है होमर की एज का. जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और ख़ास तौर पे हमारी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जिस घर से कोई लड़की भाग जाती है, मैं इलोपमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, किडनेपिंग की बात नहीं कर रहा, वो फैमिली तबाह हो जाती है. उस फैमिली की दूसरी बच्चियों की शादियां नहीं होती और इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है, जो गांव है, जो बरादरी है, जो कबीला है, वो ताने मार मार के उस खानदान के मर्दों को उनका जीना हराम कर देते हैं. सो इस बैकग्राउंड में जब हम ये बात करते हैं तो इसकी सोसाइटल इम्प्लीकेशंस हमें देखने की जरूरत है. अब करना क्या है? पुलिस का रोल, जैसे आपने फरमाया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है कि पुलिस इज़ ऑलवेज सिंपथेटिक टुवर्ड्स द एक्यूज्ड, स्पेशली इन केस ऑफ ऑनर किलिंग, क्योंकि इन देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट वो ये समझते हैं कि इसने किया तो ठीक है, वो लड़की ख़राब थी, बदनामी का बायस बनी, उसने घर को तबाह कर दिया, फैमिली को तबाह कर दिया, अगर उसको मार दिया तो किया तो ठीक. सो वो उसको उस सिवेरिटी से इन्वेस्टिगेट या उस दर्द दिल से इन्वेस्टिगेट नहीं करते जो विक्टिम के लिए उनके दिल में होना चाहिए. सो दे हैव अ सिंपैथी विद दी, और उसकी थोड़ी सी डोमेस्टिक वायलेंस की रिफाइंड शक्ल में उसकी तफ्तीश और उसके लूप होल्स और फिर कानून की जो आपने बताया इन एडिकेसीज और इनफर्मिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ और फिर किसास और दियत की आड़ लेते हुए वो सुलह सफाई वाला जो वो सारा काम है. तो जो वे फॉरवर्ड की आपने बात की है, मैं उसमें सिर्फ दो बातें करना चाहता हूँ. एक तो ये है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि इस तरह का जो बारबैरिक एक्ट है, जो हीनियस ऑफेंस है, और ये ऑर्डिनरी मर्डर केस के तौर पे इसको ना लिया जाए और इसके मुतल्लिक बड़ी स्पेशल इसके ऊपर, और जैसे कंदील बलोच के उसके बात हो रही थी कि और सरकमस्टांशियल एविडेंस की बात हो रही थी, फॉरेंसिक एविडेंस की बात हो रही थी, उस पर ज़्यादा